व्यंजन शलाक चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसेन हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभांशुके प्रणमामि हरि श्री आदेवी काकू भरगद गदयाद्यवाच जाचे निपत्त भूमि दंडवत उद्भटाती अस्य प्रसादमुग्धस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्विके तव गणे गणनं विधि अंगश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दीकृतेन्दी परम् जट्टञ्जाकुजरोचि संविदवतम् पट्टम्बरस्य श्रिय वृन्दारण्य निवासिनम् हृदि लसद्दामाथिरामोदरम् राधास्कन्द निवेशितोज्ज्वलभुजम् ध्यायेन भक्त्या विनापराधलक्ष्यै चिन्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते शरणार्थिने गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाने कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय तवैवास्मि तवैवास्मि न जिमामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमां चरणं
श्री राधारमण जी के गोस्वामियों का बहुत आभारी हूं। मैं सब प्रकार से अयोग्य होने पर भी जहां मूर्धन्य विद्वान यहां पर रहते हैं, स्वयं गोस्वामी लोग बड़े विद्वान लोग हैं, इस पर भी मैंने भक्ति विनोद ठाकुर के आत्मचरित्र में मैंने देखा मसूदन गोस्वामी जी के बड़े आभारी हुए। हमारा समस्त गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय इन लोगों का आभारी है। जब जब भक्ति विनोद ठाकुर जी को और जगत गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाल श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी को कोई भी आवश्यकता हुई, सारा बंगाल का समाज स्मार्ट समाज उनका विरुद्ध हो गया, उस समय में इन लोगों के पृष्ठपोषक राधारमण के ये श्री मसूदन गोस्वामी जी थे। मैं सुनकर के और भी अभिभूत हुआ। कल हमारे परम पूजनीय गौरकृष्ण जी और पद्मनाथ जी कह रहे थे कि श्री मसूदन जी की गोस्वामी जी की डायरी में ये सब लिखे हुए हैं। कभी देखूंगा, ये सब बड़ी अच्छी चीजें हैं। तो मैं न तो विद्वान हूं न कथावाचक हूं। गुरु जी ने मुझे कृपा करके कुछ साधारण भाव से भक्ति साधन करने के लिए आदेश दिया, थोड़ा सा प्रचार करने का भी आदेश दिया है, प्रचारक हमें नहीं। तभी हमारे पूज्य विशंभर जी गोस्वामी बहुत ही मुझे स्नेह करते थे, वैसे ही हमारे विद्वत वर्ग गोपकिशोर जी मुझे बहुत स्नेह करते हैं, इसलिए उनको यहां पर श्री राधारमण की कृपा ग्रहण करने के लिए मुझे अवकाश दिया। मैं कुछ पाठ प्रवचन करने के लिए नहीं आया, मैं कुछ निवेदन करने के लिए आया। इच्छा थी जो सुनू तो सुजोग तो नहीं हुआ। मैं विशेष करके यहां श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की महिमा और अंतशील चैतन्य महापुरुष जी की जो करुणा प्रसिद्ध थी उसे बहुत अभिभूत, उन्हीं का ये निर्दर्शन है चैतन्य महाप्रभु जी की करुणा का और गोपाल भट्ट गोस्वामी की प्रेम भक्ति का श्रेय है कि श्री राधारमण जी यहां पर प्रकटित है। विशेष करके यहां की सेवा परिपाटी इतनी सुंदर है, भव्य है कि यहां के हमारे श्री श्री गोविंद जी, गोपीनाथ, मदन मोहन इत्यादि प्राचीन श्री विग्रह, ऐसा मन में होता है कि शायद सेवा के अभाव में यहां से प्रकट रूप में दूर चले गए, कोई जयपुर में चले गए, कोई नाथद्वारा में चले गए, कोई कहे, किंतु हमारे राधारमण जी अनुग्रह करके ये कहेंगे इन लोगों की सेवा की परिपाटी दी है, उन्हीं की करुणा की मैं दो एक बातें मैं यहां पर निवेदन करना चाहता हूं। गोपाल भट्ट पर कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु की करुणा, हमारे गोस्वामी ने उसको किस रूप में ग्रहण किया है। श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्रीदरूप गोस्वामी का विदग्ध महाप्रभु का मंगलाचरण का वह श्लोक जो लिखा है उसी के ऊपर मैं दो एक बातें कहूंगा। उन्होंने लिखा है अनर्पित चरिन चिराग करुणी अवतीर्ण फलो समर्पयित तुम उन्नतोज्वल रसान स्वभक्ति हरिहपूर सुनकर भूत कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्तुत में प्रतिवर्ष सचिन। चैतन्य महाप्रभु की करुणा का क्या कहना, इनकी अपार करुणा है। ये राधा कृष्ण स्वयं दोनों मिलित करुणा है, करुणया अवतीर्ण कलम, ये कृष्ण स्वयं गोलोक वृंदावन नाम से गोकुल ब्रज से करुणा पूर्वक अवतीर्ण हुए, परम करुण कृष्ण, परम रसिक कृष्ण, परम करुण, यही हेतु यही हेतु कृष्ण लीला है। कृष्ण बड़े रसिक और साथ साथ में करुणा के घन समुद्र है। इन करुणा के घन समुद्र होने के नाते और परम रसिक शेखर होने के कारण चैतन्य महाप्रभु अथवा श्री कृष्ण ही अपने ब्रजधाम के साथ अपने परिकरों के साथ ब्रजधाम से इस भूतल पर प्रकट हुए, कयो करना की रसा स्वामी। चेतन महाप्रभु के बहुत से कारण है आने का जगत में, किंतु उनमें से प्रधान हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चार कारण को दिया, जिसमें एक मुख्य एक गौण, मुख्य में भी दो, गौण मुख्य गौण प्रधान, और प्रधान में भी गौण प्रधान और प्रधान में प्रधान, जिसमें उन्होंने बतलाया धर्म की रक्षा के लिए, दुष्कृति का विनाश करने के लिए, दुष्कृतियों को विनाश करने के लिए, धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए, युग धर्म का प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु अविभूत हुए। और उसमें दूसरा बदलाया, ये अनपित चरिन चिराग करणी आवते हैं, अनुग्रह करके उन्नत उज्ज्वल स्वभक्ति श्री प्रदान करने के। तीसरा कारण द्वैताचार्य का तुलसी दल लेकर समर्पण करना। आप यदि नहीं आएंगे तो मैं विश्व का संहार कर दूंगा, आपके द्वारा ही ये जगत में धर्म की प्रतिष्ठा होगी, स्वभक्ति का प्रचार होगा, युग धर्म का प्रचार इत्यादि होगा, दूसरों के द्वारा संभव बने। इन पाषंडों को विशेष करके तत्सामयिक पाषंडों की अवस्था देखकर अत्यंत विभव उठे भाव में अब तुलसी दल और जल देकर के भगवान को आवेदन किया, उनका सिंहासन फिर उठा। कब आते, आते तो जरूर युग धर्म के लिए जाते हैं, कब आते, किंतु उनका उनका यह निवेदन सुनकर, प्रार्थना सुनकर वो झट होकर से चले आए। और चौथा कारण अपने लीला माधुरी का आस्वादन करने के, राधाया प्रणय महिमा की दृश्य हो नहीं होगा इत्यादि। कृष्ण बड़े सुंदर है, बड़े मधुर है, उनके प्रति राधा जी का प्रणय भाव क्या है, उनका जनूप माधुरी, लीला माधुरी, बेन माधुरी, गुण माधुरी, ये जो विशेष चार मधुरियां हैं, इनको श्रीमती राधिका जी कैसे आस्वादन करती है, और इन माधुरियों को आस्वादन करके उनको कौन सा सुख होता है। इन तीजियों के लोभ से श्री कृष्णचंद्र जी राधा जी की अंग कांति और भाव ये दोनों लेकर के जरूरत में अवतरित। इसमें मैं पहले बतला रहा था करने आवर्तित न करो, कृष्ण लीला में उन्होंने ब्रज में आकर दास सख्य बात्सल्य मधुर इन रसों का आस्वादन किया, किंतु उनकी राधा जी की कृष्ण के प्रति कैसी प्रणय में महंगा है, और ये प्रणय क्या है, प्रेम स्नेह मान प्रणय अथवा प्रणय मान, ये प्रणय कैसा है। प्रणय में एक ममत्व की जरूरत होती है, सेवा में बंदी भाव ही ये ममत्व, जिसका जितना ही ममत्व अधिक रहेगा कृष्ण के प्रति उतना ही इन चीजों को वो समझ सकेगा, अनुभव कर सकेगा। ममता नहीं है प्रेम होगा ऐसा नहीं, ममता अतिशयन की तरह, ममता उसमें अत्यंत प्रगाढ़ जितनी होगी उतना ही बड़ा श्रेष्ठ होता है। चैतन्य महाप्रभु जी अर्थात कृष्ण ने देखा मैं प्रेम का विषय हूं और सब प्रेम के आश्रय हैं, उन समस्त आश्रय में राधा जी सबसे श्रेष्ठ आश्रय है। लागनी की सार, लागनी का सार प्रेम, प्रेम का सार महाभाव, महाभाव का स्वरूप महाभाव ही श्रीमती राधिका जी का स्वरूप। अतः जब तक इस भाव को मैं लेकर के जगत में नहीं आऊंगा तब तक इसको आस्वादन नहीं कर सकता। यहां पर कुछ वक्तव्य यह है, हमारे कुछ महानुभावों का यह विचार है, गोलोकगत गोकुल ब्रज में राधा जी का पार्थिव भाव नहीं या गोपियों का पार्थिव भाव नहीं, केवल इस जगत में उसको लेकर के प्रकट होते हैं। और इस जगत में अश्रावण करते हैं, कुछ महानुभावों का ऐसा भी विचार है। किंतु श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी का उन्होंने अमृत प्रवाह में ऐसा लिखा है कि ऐसा विचार होने पर भी यह विचार जरा ठीक नहीं जचता। जो चीज गोलोक गोकुल में नहीं है वो इनकी प्रकट लीला में कैसे संभवपर हो सकता है। इसलिए यद्यपि ये कहा गया वैकुंठ आदि थे नहीं ये सब लीला प्रचार, वैकुंठ इत्यादि में इन लीलाओं का प्रचार नहीं है, यहां तक कि गोलोक में भी इस लीला का अधिक प्रचार नहीं है, प्रसार साधन नहीं है। विश्वनाथ चौपति ठाकुर जी ने अपने इसी श्लोक के टीका में उन्होंने बतलाया है, यद्यपि गोकुल के गोलोक के अंतर में गोकुल है किंतु गोकुल का वैभव गोलोक है। गोलोक में स्वकीय और ऐश्वर्य भाव कृष्ण का नित्य किशोर वहां है। विश्वनाथ चौपति ठाकुर जी लिखते हैं नित्य किशोर है वह, किंतु उसका उसमें उसमें स्वकीय भाव और उसमें कुछ ऐश्वर्य भाव है। और गोकुल में जो उसके हृदय स्थल है जिस गोकुल का यह गोलोक वैभव, उस गोकुल में ब्रज में या वृंदावन में तीन लीलाएं हैं, बाल्य लीला और गंड लीला और किशोर, तीनों लीलाएं वहां पर। वैकुंठ में तो बात ठीक क्या है, वहां तक केवल ऐश्वर्य लीला है, वहां पर नारायण इत्यादि का जन्म इत्यादि नहीं है, न तो वहां पर और कोई रासलीला इत्यादि है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी का या कृष्ण का इन लोगों से वैशिष्ट है। तो गोलोक में गोलोक गोलोक से भी उसका हृदय स्थल उसका मूल जो ब्रज गोकुल या वृंदावन है इसमें कृष्ण की बाल्य भी जाती है। इसलिए नंद नंदत्व का वहां पर भाव भी है, कृष्ण भजेंद नंदन श्याम सुंदर है, आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्दाम वृंदावन। गोलोक में वो एक गारखाई है, प्राचीर है, उसमें ये सब लीलाओं का वहां पर इस तरह का तात्पम्य और वैशिष्ट रसमय भाव वहां पर प्रकटित नहीं है, किंतु गोकुल में ये सब लीलाएं हैं। इसको जानने के लिए यह भी जानना उचित है कि ऐश्वर्य लीला किसको कहते हैं, माधुर्य लीला किसको कहते हैं। भक्ति विशेष करके प्रेमा भक्ति प्रेम प्रेम में दो चीज होती है, विशेष करके ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति जो स्वभावतः अनुराग है जिसको रागात्मिका पर जन कहते हैं, उनमें एक संबंधात्मिका भक्ति पाक प्रेम और दूसरा कामात्मिका, ये दो चीज। जब तक यह संबंध नहीं रहता इन तीनों में दास्य सत्य वात्सल्य इनमें संबंध संबंधात्मिका ये भाव है। इसमें संबंध की मर्यादा को तोड़ करके कृष्ण कुछ भी नहीं करते या उनके सेवक भी नहीं करते, कुछ मर्यादा में बनते हैं। इसलिए संबंधानुदान है जो कृष्ण सेवा की वासना होती है वो मर्यादा के में बंधी हुई, वो संबंध से मर्यादित होती है। ये लोग अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार में कृष्ण की सेवा करें, उसका अतिक्रम नहीं कर सकते। और कामात्मिका में कृष्ण सेवा की वासना के अनुकूल या अनुगत होता है संबंध, या संबंध का मर्यादा होती है। उस मर्यादा में बंधन में नहीं, ये लोग नहीं रहते। जैसे गोपियों ने पति सुतानुमय भ्रातृ ब्रह्मान अति विलंघते अंत अच्युता होता, ये सबको बंधन इत्यादि के मर्यादाओं को वेद धर्म लोक धर्म लज्जा शील धैर्य सबको तोड़कर, इनकी हथकड़ी बेड़ियों को तोड़कर और कृष्ण से मिलने के लिए रास में उपस्थित हुए। इसलिए कृष्ण ने इसलिए कहा न पारे हम निरबद्ध संयुजा, मैं गोपियों का ऋण कभी भी नहीं चुका सकता, अनंत काल की आयु होकर भी देता हूं जैसी आयु पा कर तुम्हें, हे गोपी हे देवियों मैं आपका ऋण से कभी भी ऋण नहीं हो सकता, मैं सदा के लिए आता हूं। कृष्ण ने कहा जो कुछ मांग लो, न गोपियों ने कहा जैसे कुछ दे दो, तो अब पर मांगने के लिए भी कहने पर गोपियां क्या मांगेंगी, आप लोग तो यही मांग लीजिए अपनी सेवा दे दीजिए, इसलिए मैं कभी भी पूरी नहीं हो सकता। दूसरी बात, इसलिए भी पूरी नहीं हो सकता, गोपियां एकनिष्ठ हैं और कृष्ण कैसे हैं बहुनिष्ठ। कृष्ण ने गोपियों से प्रेम करने के लिए अपने भाई माता पिता बंधु या किसी भी एक तुच्छ से तुच्छ भक्त को भी नहीं छोड़ सकते, उसने बंधे दिए ये जथा प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। लेकिन उसमें बंधे दिए हैं किसी भी भक्त को किसी के लिए नहीं छोड़ सकते, और गोपियां पतियों को छोड़ दिया, पिता माता को छोड़ दिया, सास सासू को छोड़ दिया, लोक धर्म वेद धर्म मर्यादा जितनी प्रकार की मर्यादा है लोक लज्जा इत्यादि सबको तुच्छ के रूप में देख करके और उनको छोड़ दिया। कृष्ण ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं, वो बहुनिष्ठ उनको रहना ही होगा, किंतु गोपियों के लिए नहीं। यदि किसी को छोड़ दिया कृष्ण ने, लाखों को गोपियों में ही केवल ले लिया जाए, यदि सब गोपियों को छोड़ करके राधा जी के पास में रहते हैं, कहते हैं कि आपके अतिरिक्त हम किसी के पास नहीं जाए, तो बाकी फिर नहीं हो जाए, इसके लिए तो ये सब जो लीलाएं हैं गोलोक के अंत प्रदेश में प्रकोष्ठ में, ये सब लीला वहां पर नित्य है। यदि वो लीलाएं वहां नहीं है ये सब, और कृष्ण वहां पर अवसाद पादन नहीं करते हैं, तो इस श्लोक में कैसे होगा, क्योंकि लिखा है कि कृष्ण जी ये 27वें चतुर्युग में द्वापर के अंत में ब्रज सहित वैदा प्रकाश, ब्रज को लेकर के यहां पर आए, परिकरों को लेकर के आए, ब्रज से लेकर के आए, तो जत ब्रज में ही ये पार्थिव भाव और ये सब रस नहीं है, माधुर्य रस नहीं है, केवल जगत में ही आस्वादन करने के लिए महाप्रभु के रूप में आए या कृष्ण के रूप में आए, तो ये कैसे संभव है। इसलिए वहां पर समस्त लीला है, उस लीला को लेकर के इस जगत में कुछ समय के लिए इस वृंदावन ने बताया, वहां पर भी लीला चल रही है, यहां पर भी लीला चल रही है, ऐसे नहीं जो वहां पर खाली हो गया हुआ। किस लिए आए, करुण या अतिर न कलऊ, प्रजकाजरा सा साधन जो है यहां के जीवों को भी कुछ दिया जाए, कुछ आस्वादन भी किया जाए, आस्वादन करने के लिए एक विशेष बात, वो देने की बात नहीं है, इसका हम पीछे विश्लेषण करेंगे, जो देने के लिए चीज है उसी को लेकर के आए, वो क्या चीज है इस श्लोक में वर्णन करता है, करुणा अवतीर्ण होकर करुणा से इनका हृदय द्रवित हो गया और इस जगत में आए। महाप्रभु जी क्या करुणा क्या वैशिष्ट, जितने अवतार हो गए हैं सभी अवतारों से रामचंद्र इत्यादि की तो बातें क्या, ये स्वयं तत्वतः एक होने पर भी रस वैचित्री के माध्यम से इन लोगों में भी भगवत्ता में भी तारतम्य है। चैतन्य महाप्रभु की करुणा जब हम विचार करते हैं तो स्वयं कृष्ण के प्रकट काल में उनकी जो करुणा प्रकाशित प्रकटित नहीं हुई वही कृष्ण के गौर रूप में वो करुणा प्रकाशित हुई। इसलिए करुणा से क्या है, कैसी करुणा है देखिए, कृष्ण के समय में कृष्ण ने बड़े बड़े असुरों का संहार किया, उनको मुक्ति भी दी, उतना जैसी राक्षसी को केवल बेश मात्र से माता का बेश बनाया और कपट बेश में लेकर के उनको दूध पिलाने का भान किया, यद्यपि उसका उद्देश्य था उसको मारने के लिए, किंतु उसे एक धातृ उचित अनुमति दे दी। यह किसी भी लीला में यह कभी सभी संभव करने हुई और दूसरे अवतार में, यहां तक कि कृष्ण ने लताओं को भी गुलबों को भी कृष्ण का अतिरिक्त किसी भी अवतार में या प्रेम नहीं दिया गया, सबको उन्होंने प्रेम दिया। किंतु कृष्णचंद्र जी ने वो नहीं करना की जो महाप्रभु की करना है, यही हम लोग दिखला रहे हैं विषय आज का। ये असुरों को उन्होंने मारा, गतियां दे दी, किंतु उनको ये नहीं उस जन्म में उनको अनुभव न हो ये कृष्ण हमारे ऊपर में दया की, पुतनों को मारा, पुतना को मारा, आधार से तुम्हारा, बकाश को तुम्हारा और सबको मारा, उनके जितने परिवार जन के लोग थे उन लोगों ने किसी ने अनुभव नहीं किया उस जीवन में जब कृष्ण ने दया पर की है। जब पुतना मरी तो उसका भाई बकी, बकाशु और अभाशु ये दोनों उसके भैया हैं, बदला लेने के लिए चिन्ह निश्चित किया और कृष्ण पर वैसे ही अभाशु बन करके और बक बन करके उनका पान संहार करना चाहे द्वेष में भर कर। उसी तरह से महाभारत युद्ध में भी देखा जाता है, सब लोगों ने किसी ने भी उस जीवन में उनकी करुणा की उपलब्धि नहीं की और महाप्रभु पर गया। एक तो महाप्रभु जी ने किसी को प्राण से संघात नहीं किया, दूसरे दूसरे अवतारों में राम आदि अवतारों में उन्होंने धनुष बाण और चक्र और दूसरे दूसरे तीसरे लोगों को असुरों का संघात किया, महाप्रभु जी ने किया, उनका आसुरिक भाव हरण कर दिया, इसलिए वो हरे और साथ साथ में उसमें प्रेम की बीज बोती और लोगों ने उसी जन्म में अनुभव किया कि चैतन्य महा के प्रभु के हमारे ऊपर में कैसी कृपा है। सबसे पहले जगाई मधाई को लीजिए, वो लोग पशु श्रेणी के हैं, महाप्रभु जी ने उनका वध नहीं किया, बस हृदय से लगा लिया, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कहते 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 हरि बोल, करते करते प्रेम में अभी होकर के रुन गया और चरणों में जुट गए, जगत को पवित्र बनाने वाले बन गए, महाप्रभु की करुणा की उपलब्धि की उसी जन्म में। रूप सनातन के ऊपर में उन्होंने करुणा की, गोपाल भट्ट जी के ऊपर में उन्होंने करुणा की, त्रिमल भट्ट और प्रबोधानंद सरस्वती पर उन्होंने कृपा की, वेंकट भट्ट पर कृपा की, उन लोगों ने अनुभव किया। महाप्रभु जी दक्षिण देश में गए, कावरी के तट पर श्री अंगम चार महीना वहां रहे, पहले जय मंदिर में गए, जबकि वो नित्य करने लगे आवेश में, सब लोग देख करके आश्चर्यचकित हो गए, ऐसा तो हमने सन्यासी और किसी को देखा नहीं, जो लोग थे जब देख रहे थे वो भी उनके साथ साथ में मिलकर के वो भी नित्य करने लगे हरी बोल करने लगे। विशेष करके वहां के ये तीन भाई और उनके पुत्र गोपाल भट्ट जी उस समय बहुत छोटे थे, 11 वर्ष के थे, हमारे गौरकिशोर पूज्यपाद गौरकिशोर दास कृष्ण जी गोस्वामी ने बहुत ही सुंदर गोपाल भट्ट का जीवन चरित्र पर और कुछ गोस्वामियों का उसमें परिचय है, बहुत ही सुंदर एक ग्रंथ लिखा है, आप लोग देखेंगे इसमें महाप्रभु जी की करुणा, उनका अवदान, गोपाल भट्ट गोस्वामी का की महत्ता इत्यादि के संबंध में उन्होंने बहुत पूरी पूरी लिखा है, बहुत ही सुंदर पुस्तक, मैंने उसका पढ़ा शाम से देखा, मैं भाव में भी हो गया कि बहुत यथार्थ में ये लोग विद्वान व्यक्ति हैं। महाप्रभु जी वहां गए, देखा तीन भाइयों ने, उन्होंने आकर्षित हुए। महाप्रभु जी ने ये स्थिर किया कि ये वर्षा का चार फल मैं और कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा, इसके बाद तो वहां ठहर गए। कावड़ों ने स्नान किया, दर्शन करना है। इन लोगों ने कहा कि हमारे यहां पर आज प्रसाद नहीं किए, दीक्षा हमारी यहां नहीं। विमल भट्ट, प्रबोधानंद सरस्वती और वेंकट राय, ये सब बड़े बड़े विद्वान थे, अगाध विद्वान, शिष्य संप्रदाय के बहुत अगाध विद्वान थे। विशेष करके वेदांत शास्त्र में जो भक्ति का वेदांत, वेदांत भक्ति शास्त्र है, इसमें पूर्ण पारंगत थे। वैसे लेखक भी थे, सुसाहित्य, संस्कृत के बहुत बड़े खारे विद्वान थे, धुरंधर और सिद्धांत में निपुण थे। महाप्रभु जी को अपने घर में रखा। महाप्रभु जी का आसन करते थे, प्रतिदिन निकाल दर्शन करते थे श्रीरंगम में आकर मंदिर में, और महाप्रभु जी वहां पर है। महाप्रभु तो चुपचाप बैठने वाले नहीं है, कुछ ना कुछ तब प्रसन्न करेंगे, उसी के लिए तो आए हैं। इन चारों को कृपा करने के लिए श्रीरंगम में गए। उन्होंने एक दिन पूछा, देखा क्या इन तीनों भाइयों है तो बड़े विद्वान। कुछ लोग ये भी कहते हैं जैसे चैतन्य चैतन्य भागवत इत्यादि में, चैतन्य चैतामृत में तो ये वर्णन नहीं है, तीनों भाई वहां पर थे और गोपाल भट्ट थे। भक्ति रत्नाकर में ऐसा स्पष्ट लिखा है, वो भी एक प्रमाणित है, तीनों भाई वहां पर उपस्थित थे। महाप्रभु जी ने एक दिन उनसे पूछा, वेंकट भट्ट से उनको अभिमान था, इस बात का अभिमान था, पर तत्व नारायण कृष्ण नहीं, कृष्ण उनके अंश है, भागवत तो उन्हीं पढ़े हैं, शास्त्र भी पढ़े थे, किंतु उनमें विष्णु पुराण उनमें प्रमाणित माना जाता है, इसलिए उनको यह अभिमान था कि सबसे पर तत्व जो है, तत्व की पर अंतिम सीमा ये नारायण तत्व है, ये सारी स्वर्ग शादी की है। और कृष्ण की यही जो जो उनकी लीला है यही सर्वोत्तम है, वो अवतार नहीं लेते। महाप्रभु जी ने उनसे परिहास के रूप में सीधे सरल शब्दों में उनसे पूछा कुछ प्रश्न, लक्ष्मी जी क्यों नारायण को छोड़कर के और कृष्ण के राश इत्यादि में सम्मिलित होने की वासना करती हैं, उनकी सेवा करने की वासना उनमें क्यों है, बतलाओ तो। उन्होंने आज तक ऐसा प्रश्न ही नहीं सुना कि जी कहां ऐसा लिखा है, कश्यान भाव अश्वनदे एक वित्त में है। बड़े सरल स्वभाव से महाप्रभु, किसी के साथ में महाप्रभु जी तर्क नहीं करते थे। काशी में अभी आए पंडितों की सभा में उन्होंने अपने आप तर्क नहीं आरंभ किया, उन्होंने तर्कों का कुछ उत्तर दिया, सामंजस्य किया। हमारे सार्वभौम भट्टाचार्य से भी महाप्रभु जी ने कुछ तर्क वितर्क नहीं किया, बल्कि उनके विचारों का बड़े मधुर सबसे स्वाभाविक सरल सरल ढंग से उनका समाधान कर दिया, जिसका उत्तर उन लोगों के पास। महाप्रभु ने इसी तरह से तो प्रचार किया, बड़े बड़े विद्वानों को चरण में झुका दिया, जगत देकर के आश्चर्यचकित कर दिया। कुछ लोगों के साधु भट्टाचार्य जी, राय रामानंद जी, धर्मरूप सनातन जी, इधर प्रकाशानंद सरस्वती जी, ऐसे लोगों का आकर्षण किया कि जगत अपने आप उनके चरण में झुलक गया। तो उन्होंने बताया देखो तत्वतः कृष्ण और नारायण एक ही तत्व है, किंतु रस के द्वारा उनका तात्पर्य है, एक ही चंद्र में 16 कलाएं होती हैं, ये कलाओं का अंतर जरूर मानना पड़ेगा, किंतु चंद्र में अंतर है ये नहीं मानना पड़ेगा। उसी तरह से भगवत्ता में तात्पर्य है, रस के विचार से तत्वतः विचार वो नहीं है, तत्वतः एक ही तत्व है। इसलिए लक्ष्मी जी भी यदि ऐसा चाहती है कृष्ण के रूप पर, उनके गुणों पर, उनके माध्यम से प्रमुख होती है, तो ये कोई बात नहीं। और उन्होंने श्रीमद् भागवत के सारे उदाहरण लेकर उनके सामने प्रस्तुत किए, आकर्षित महाप्रभु की तरफ हो गए, उनको शिष्य संप्रदाय से निकाल कर और कृष्ण राधा कृष्ण के प्रेम रस में उनको सारा बोल कर दिया। ये चार व्यक्ति ही महाप्रभु के अंगत हो गए। ये जो कृपा की गोपाल भट्ट गोस्वामी के ऊपर में, जो समय के दिग्गज विद्वानों में से ये तीनों भाई थे, उनके ये पुत्र थे वेंकट भट्ट के, उस समय के प्रसिद्ध विद्वान थे वो लोग। उन्होंने कुछ उस समय कारिकाएं की थी, लिखी थी, उसी समय सत्संदर्भ, उसी समय में उन्होंने हमारे गोपाल भट्ट जी की बीज वहीं पर लिखा, उन्होंने महाप्रभु जी के आदेश से उनका संकलन उन्होंने नहीं किया, पीछे से यहां आकर के जीव गोस्वामी के द्वारा विशेष रूप में पूजा पर वो विषयों का के अनुसार में यह सत्संग किए, किंतु मूल कृति उन्हीं की है। जीव गोस्वामी का भी कर्तित्व है किंतु उन्हीं का मूल है, यह जाता है उन्हीं के पक्ष में जाता है। हरिभक्ति विलास इत्यादि उसका उन्होंने संकलन उन्होंने किया हमारे सनातन गोस्वामी के निर्देश के अनुसार, जैसे जैसे गोस्वामी ने कहा, विशेष रूप सनातन जी ने जैसा किया उनके आदेश का यहां देखा। तो उनको कहा वो शिष्य संप्रदाय में ऐश्वर्य मार्ग के उपासक, और उनको राधा कृष्ण के रस में सारावोर कर दिया, राधा रमण की सेवा अपेक्षा की, उनके लिए सालग्राम भी बन गए राधा रमण, उनके प्रेम में भी गौरव करके प्रसिद्ध पुत्र, ऐसा कहीं भूतों में भविष्य ऐसा नहीं देखा जाता। ये महाप्रभु की करुणा उन लोगों ने उपलब्धि की, गोपाल भट्ट जी ने अनुभव किया, उनके ग्रंथों में ये सब चीजें हैं। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को आप लोग जानते ही हैं। इसी तरह से जितने लोगों के ऊपर उन्होंने करुणा की, उन सब लोगों ने उन करुणा की उपलब्धि इसी जन्म में की, और उनके चीर ऋणी बन गए। साधु भट्टाचार्य से लेकर के प्रकाशानंद सरस्वती इत्यादि सभी उनके चीर ऋणी बन गए, उन्होंने अनुभव किया, कृष्ण लीला में अनुभव की बात नहीं, इसलिए उनकी कृपा से महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण ही हैं, इनकी महिमा का उनकी करुणा का कुछ उत्कर्ष है। दूसरी बात, कृष्ण लीला में यह देखा जाता है, जे जथान माम प्रपद जनते ताम तथा व भजाम्य, ताम तथा व भजाम्य हम, कृष्ण की ऐसी प्रतिज्ञा, जो जैसा भक्ति करेगा उसके अनुरूप ही उसको फल देंगे, उतना ही फल देंगे। महाप्रभु में ये नहीं, महाप्रभु का करुणा का वैशिष्ट्य क्या है, उनकी करुणा का वैशिष्ट्य क्या है, प्रेम तो देते ही, जिसके पास में प्रेम नहीं उसको पात्र देकर के प्रेम भर देते हैं, ये महाप्रभु की विशेष करुणा है। जिनके अंदर में पात्र भी नहीं है उनको पात्र भी दे देते हैं, जिसके तरफ में देखा जहां जहां दूर दर्शन है, जहां ऐसे कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम ऐसे जा, अरे मनुष्यों की तो बात क्या है, पशु तृण लता गुल्म हाथी तक मृग सबको कृष्ण प्रेम दे दिया, हाथी घुटने के करके कृष्ण कृष्ण कहने प्रेम में भी हो गए। चैतन्य महामूर्ति जिधर देखा उधर ही प्रेम दे दिया, वो बाघ भालू क्या पात्र थे, इसलिए महाप्रभु जी करुणा ये वही कृष्ण ही करुणावतीर्ण करो, करुणा दान करने के लिए जगत में आए, इसलिए उन्होंने पात्रता दे करके पात्र भी दिया और प्रेम भी दे दिया, और कौन प्रेम दिया, ब्रह्मा दुर्लभ प्रेम सबा कार्य जाए सबका, ब्रह्मा का जो दुर्लभ प्रेम है, प्रेस्तु अपि असुलभम नारद प्रभृति जो उनके प्रेमी भक्त हैं, यहां तक कि उद्धव जो परम प्रेष्ठ उनके हैं, इन लोगों के लिखी दुर्लभ और जगत के जीवों के लिए करुणा का प्रकट देने के लिए, इसलिए करुणावतीर्ण करो, ये चैतन्य महाप्रभु करुणा करने के लिए ही देने के लिए आए, क्या चीज देने के लिए, जो चीज आज तक बहुत दिनों तक नहीं दी गई, एक कल्प पहले जब चैतन्य महाप्रभु पिछली बार भी कृष्ण के बाद में अपनी लीला का प्रकाश किया उस समय में दिया गया, अब तक से अभी तक किसी ने नहीं दिया, कृष्ण लीला भी में नहीं दिया गया, प्रेम का आस्वादन उन्होंने किया, कुछ लताओं पताओं को दिया, किंतु व्यापक रूप में जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने जो सामने आया उसी को कृष्ण प्रेम दिया, ऐसा नहीं देखा। गौर नित्यानंद है नहीं ये सब नीचा, चैतन्य महाप्रभु अवतार वह प्रेमामृत बन गया, ये बन जाए जैना भाषे से जीव खार कोटि कल्प जन्म नहीं तहार उद्धार, किंतु चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद देना ही ये सब नाम लेंगे प्रेम दें पहे अस्तुधा। ये चेतन महाप्रभु की करुणा का वैशिष्ट है, इसलिए करने आवती न करो चेतन महाप्रभु इस करुणा के लिए सबको पात्र भी दिया और थरथर करके प्रेम दिया, जो ब्रह्मा इत्यादि के लिए, नारद इत्यादि के लिए, यहां तक कि उद्धव के लिए भी जो चीजें संभव नहीं था वो देने के लिए, क्या देने के लिए, इतने दिनों के बाद में जिसको जगे कभी कांप गए, उनका हाथ नहीं चला, कृष्ण स्वयं आकर के लिख दिया, वो क्या है, स्मर गरल खंडनम मम शिवशि मंडनम देवी पद पल्लव मुदा। वो जगह नहीं लिख सके, उनका हृदय कांप गया। राधा जी उनकी शक्ति है, राधा जी को कैसे कह लीजिए अपने चरण हमारे सिर पर रख दो, मैं तुम्हारे चरण में अपना शीश नवाता हूं, मुझे क्षमा करें, जगह नहीं लिख सके। इसलिए पहले ये सब चीजें नहीं थी, महाप्रभु के बाद ही आने के बाद में हमारे गोस्वामियों ने ऐसा लिखा जे कृष्ण क्या करते हैं, हमारे प्रभुदानंद सरस्वती जी लिख रहे हैं, जतिम करीश बहु सर फल का अपमान नित्यम परस्य पुरुष शिखंड मौले जसुंदे विशुभान जाया कुंज भवन अंगल माध्यम श्याम। ये लिख सकते हैं जयदेव गोस्वामी, जब उतना ही नहीं लिख सके तो ये सब क्या लिखेंगे। रूप गोस्वामी रघुनाथ गोस्वामी की तो बात ही क्या, खास कमरे के लोग हैं ये, मंजरी यहां अपनी है, इसलिए इन लोगों ने चीज जो लिखा है महाप्रभु के पहले किसी की भी हिम्मत नहीं हुई, फिर ऐसा साहस नहीं हुआ कि ऐसे अपना कलम उस पर लिखते। रूप गोस्वामी ने तो रूप गोस्वामी कैसे कहते हैं, श्रीमती राधिका जी के लिए प्रार्थना करते हैं कि देखो आएगा ना काला, उसको मत आने देना यहां, वो स्त्री भेष बना करके सुबल आएगा, सुबल इसलिए उसको सुबल का जो सखा कृष्ण जो स्त्री का वेश बना करके आएगा, कुंज के बातों से रोक देना, कभी खबरदार हमारे यहां मत आने देना। और कृष्ण महापुरुष करके हाथ जोड़ रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी दासी का तो राधा जी की तो बात, इसलिए ये सब प्रेम का प्रचार नहीं था, महाप्रभु के आने के बाद में हुआ, इसी प्रेम को देने के लिए महाप्रभु जी आए। इसलिए यहां पर कह रहे हैं समर्पयी तुम उन्नतोज्वलर्षान सौ भक्ति श्रियम करुणया करुणा पूर्वक उस चीज को जो ब्रह्मत्यादि के लिए हमने पहले बतलाया सबके लिए जो सुलभ नहीं था वह प्रेम देने के लिए महाप्रभु जी समर्पयी तुम वो है करुणा किस चीज को देने के लिए आए, उन्नत उज्जवल अर्शान स्वभक्ति सियन, उन्नत और उज्जवल रस, उन्नत क्या जो सब प्रकार से उन्नत है, चार प्रकार के भाव बताए गए हमारे भक्ति स्वामी सिंधु ने बताए गए, शांत को भी छोड़ देते हैं, दास सप्त बात समझ, ये सभी उन्नत है, विशेष तौर के ब्रज के ये भाव है, वैकुंठ इत्यादि की नहीं है पहले बतलाया गया, इनमें भी दास से सख्य सख्य से बासल्य और बासल्य से मधुर मिला है, किस लिए सेवा की वासना से, जिसमें जिस प्रेम में महत्व अधिक है, ममता अति अतिशयांकित और चित्त को द्रवित कर देता है, यह भाव जिसमें रहेगा ममता अधिक रहेगी वो उन्नत है, इसलिए क्रमशः इनसे मथुरा सबसे उन्नत है। दूसरी बात रस भी इसी प्रकार से रखते हैं, शांत रस दास रस सत्य रस आश्चल्य रस और मथुर रस, मथुर को ही उन्नत उज्ज्वल रस कहते हैं, है तो वहां पर सभी रस है सुंदर एक एक से मधुर है, कृष्ण को तृप्त कर देते हैं, किंतु फिर भी उन्नत उज्जवल से संबंधित रहता है, उसको बताते हैं मधुर रस, वो क्यों का उसमें सभी है, जैसे पंचभूतों का उदाहरण देकर के बताया, समय हो रहा है इसलिए 5 बजे से आरती होगी, नहीं तो मैं समाप्त कर चुका था। अब 10-5 मिनट और। तो कहते हैं उज्जवल किसको कहते हैं, सभी रास्ते उज्जवल ही हैं, उन्नत और उज्जवल सभी हैं, चारों एक एक से हैं, किंतु फिर भी जब हम विचार करते हैं रस की दृष्टि से, ममता की दृष्टि से, तो ममता की दृष्टि से सत सत दास्य की अपेक्षा सख्य, असख्य से अपेक्षा वात्सल्य, वात्सल्य से अवधार ममता मधुर है, गोपियों है। इसका चैतन्य चैतामृत में विशेष रूप से यह सब वर्णन किया है। मैं ये सब बतला रहा हूं महाप्रभु की करुणा के लिए, करुणा का अवधान बतलाने के लिए मैं बतला रहा हूं, पहले इस चीज को समझ लिया जाए। इसलिए कहते हैं कि उज्ज्वल किसको कहते हैं, कोई चीज निर्मल होने पर उन्नत उज्ज्वल होती है, जैसे कांच निर्मल होता है, सूर्य की रश्मियों का प्रतिबिंब उस पर पड़ता है तो वह झकझक करता है, उसके तरफ हम देख नहीं सकते, तो सभी उन्नत है, ये चारों ही निर्मल है, ब्रज का जितना भाव है सभी, किंतु फिर भी तात्पर्य है। ये तात्पर्य किस लिए है, सेवा की वासना जिस रस में प्रतिबिंबित होने पर और वो झकझक करता है उसके ऊपर में निर्भर करता है, कृष्ण की सेवा की वासना यही मूल चीज है, भक्ति यही जीवों का अनुबंधी भाव है, जीव में भी अणु अणु रूप में आच्छादित रूप में लेटेंट रूप में ये है, और नित्य मुक्तों में कृष्ण के परिकरों में तो वो प्रस्फुटित रूप में, विशेष करके गोपियों में प्रस्फुटित से भी प्रस्फुटित सुगंधित और उज्ज्वल होता है, दास्य रस में प्रतिबिंबित होता है, ममता है कि तू उतनी ममता नहीं है, हाथ जोड़ करके हनुमान जी खड़े हो जाएंगे राम के साथ, आदेश देंगे उसको पूरा करें, सीता जी आएंगे राम हट जाएंगे, उसी तरह से वहां पर ब्रज में शुद्ध दास्य नहीं है, वहां पर मिश्र है, वहां पर या तो मिश्र है सख्य से अथवा वात्सल्य से, शुद्ध दास्य वही वैकुंठ में और राम के पास में होगा, और यहां पर कुछ उससे उन्नत सख्य और उससे मिश्रित अथवा वात्सल्य से मिश्रित है, इसलिए उससे भी उन्नत है, तो इस पर सेवा की वासना हनुमान से बहुत अधिक होती है, प्रतिबिंबित होती है, इनसे भी अधिक सखाओं का भाव, सखा उनको छोड़ करके जान नहीं सकते, एक मिनट के लिए एक सेकंड के लिए यदि पेड़ों की आड़ में कृष्ण कहीं खड़े हो गए रह नहीं सकते, दौड़ करके खुल गए, कहां गए कृष्ण कहां गए, श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन किया गया है, मैं अधिक समय इसमें नहीं लेना चाहता। इसके बाद में वात्सल्य में उनका ममत्व इतना अधिक है, उस पर इतना भाव और सेवा की वासना प्रतिबिंबित होती है कि वहां पर सख्य से भी ऊपर हो जाते, इतना है कि कृष्ण से बड़े हैं वो, तारण भक्षण इत्यादि भी करते हैं प्रेम से, राधा दामोदर की लीला, दामोदर जी की लीला, उनके पोखर में बंधन की लीला आप लोग सभी जानते हैं, रुदन तमहोर नेत्र जो मनु भी जानते, कृष्ण रो रहे हैं देख रहे हैं हमारी थक, मजा लुठिया तो नहीं उठाती, अरे बंदर चंचल गाली की देख बड़ा धुरंधर होगा, और कृष्ण मैया मुझे मत मार पीछे की तरफ में हट, रो रहे हैं गंगा जमुना उनकी बह रही है, काजल विस्तृत होकर के और यहां से गिर रहे हैं, दोनों गिर रहे हैं खूब जोर से लंबी लंबी सांस, काने के कुंडल भी गिर रहे हैं रोने से, और त्रिवली भी वहां पर भक्त लोग नारद इत्यादि देखते तो मुग्ध हो जाते, अरे यशोदा तेने कौन सी तपस्या की, कौन सी तीर्थों में स्नान किया तूने, जो आज ब्रह्म जगत का विश्वों का ईश्वर सबका आदि स्वयं अनादि सर्व का कारण, और वो ब्रह्म आज सबक सबक कर रो रहा है, इसलिए तारण भाषण करते कि इसलिए ममता के जो पर बिगड़ न जाए, कृष्ण ये सचमुच में नाटक कर रहे हैं अभिनय कर रहे हैं या रो रहे हैं या क्या कर रहे हैं, भक्त लोग कहते हैं नहीं सचमुच में रो रहे हैं, तो रो ही रहे हैं, नाटक अभिनय नहीं करते, कुंती जी को ये हुआ, ये सतलुज चल गया, कहीं प्रेम से वंचित न हो जाए, इसलिए ममता इनका और इनसे भी अधिक ममता है गोपियों को। इतनी ममता है कि कृष्ण के ऐसे वशीभूत हो जाते हैं, डरते हैं उनसे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा जी ना पा रहे हम देवर दर्शन। ऐसे प्रेम ये ब्रज की संपत्ति है, ये कैसे मिलेगी? इसके लिए संपत्ति से कुछ खरीदने के लिए मिलेगी, संपत्ति नहीं रहेगी तो ऐसा कोई चीज खरीद नहीं सकते। संपत्ति से दो चीज होता है, कोई चीज हम खरीदते हैं किस लिए? दुख दूर हमारा हो जाए, सुख मिले। इसलिए यहां कहते हैं उन्नत उज्ज्वल रसान स्वभक्ति श्रियम। स्वभक्ति माने अपनी भक्ति, कृष्ण के प्रति भक्ति रूपी जो श्री है माने संपत्ति है। महाप्रभु जी ने वो संपत्ति हमको दी, क्या दी? नौधा भक्ति, पंचदा भक्ति, नाम भक्ति, जिसके द्वारा हम ब्रज के इस प्रेम को हम लोग खरीद सकते हैं, अर्थात उसको प्राप्त कर सकते हैं। उस श्री को दिया, श्री माने संपत्ति, जैसे हम गाय खरीदते हैं और कोई चीज खरीदते हैं, उसी तरह से ये संपत्ति के द्वारा स्वभक्ति। महा कृष्ण तो महाप्रभु है, उन्होंने अपने प्रति ये जो भक्ति की बातें हमने जो लिखी की, यहां तक की मधुर रस की बातें, श्रीमती राधिका जी की भाव इत्यादि, ये सब चीजें आई जा सकती, कैसे पाई जाएगी? कृष्ण भक्ति रसभाविता मति प्रियतम कुतोपि यदि लभ्यते तत्लोभम अपि मूल्यमे कलम जन्म कोटि सुकृति। कोटि कोटि जो कि जन्म की सुकृति से भक्ति होती है, भक्तों का संग होता है और उनके संग से भक्ति होती है, उसमें रुचि होती है, श्रद्धा होती है, तब फिर धीरे धीरे भक्ति होती है। किंतु ऐसी भक्ति कोटि कोटि जन्मों की सुकृति के द्वारा भी नहीं मिलेगी। कौन सी? ये ब्रज की भक्ति जो माधुर्य रस वाली भक्ति है, ये संभव पर नहीं है। इसलिए राय रामानंद जी ने महाप्रभु जी को कहा था यदि कोई मूल्य हो तो उसको दे करके इसको जल्दी से जल्दी इसको संग्रह कर लिया जाए। कृष्ण भक्ति रसभाविता मति पुतो यदि लभ्यते तत्लोभम, ये लोभ के द्वारा ही, ये लोभ क्या है? उस भक्ति को खरीदने के लिए ये है। कौन? वो ब्रजवासियों की जो प्रेममयी जो भक्ति है उसको लेने के लिए महाप्रभु जी इसी क्षेत्र को दिया। कैसे लोभ? अपने लीलाओं की यहां पर अवतारणा की, श्रीमद भागवत का उन्होंने नए रूप से अर्थ निकाला, जो अभी तक अच्छा दिखा हुआ जिसको उन्होंने हमारे सनातन गोस्वामी को दिया है, पीछे से जीव गोस्वामी ने लघु तोषणी में, और पीछे से हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने ऐसी रसमयी उसकी व्याख्या की, जगत स्तब्ध रह गया। ये चैतन्य महापुरुष की कृपा है, यदि चैतन्य महापुरुष की कृपा नहीं होती तो भागवत की ऐसी रसमयी टिकाई नहीं होती। ये टिकाई नहीं होती तो भागवत को ऐसे लोग नहीं समझते, दूसरे दूसरे लोगों ने की है, किंतु महाप्रभु के कृपा कृपा के बिना ऐसी टीकाएं रश्मि टीकाएं कभी भी संभव पर नहीं हो सकती। तो उसको सुनने से क्या होगा? चैतन्य चेतावित में दिया है उन सब लीलाओं को श्रवण करने से लोभ होता है, यह लोभ पैदा नहीं होगा। वो भक्ति जो ब्रज की है, रश्मि उपासना है, गोपियों ने उनकी मधुर भाव से जो सेवा इत्यादि की, उस पर लालसा नहीं हो सकती, तो वो कभी भी जन्म जान मान करने नहीं होगी, चाहे कोटि कोटि वर्ष तक। ये होगी रसिकों के साथ, ये सब श्रीमद भागवत के रसा साधन से चैतन्य चैतामृत और हमारे गोस्वामियों के, हमारे रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी के ग्रंथों के आस्वादन से यह संभव हो सकेगा। चैतन्य महाप्रभु ने इसी चीज को दिया, इसलिए स्वभक्ति। एक दूसरा भी इसका एक अर्थ है, मैं वही कहता कि आज वक्तव्य समाप्त करूंगा, फिर कल उठा जाएगा। वो क्या है? उन्नत उज्ज्वल रसान स्वभक्ति श्रिया। उन्नत उज्ज्वल रस जो है ये किसका है? श्रीमती राधिका जी का है। कैसे? हमने एक बार बहुत छोटा था, वृंदावन में आया था, नृसिंह वल्लभ गोस्वामी जी आके वही गौर जी की जो उपासना करते हैं वहीं पर एक सभा भी थी। आपके पिताजी ने हमको भी उसमें निमंत्रण किया था, मैं भी उसमें आया था। नृसिंह वल्लभ जी यथार्थ विद्वान और रसिक प्रश्न, ये सब वृंदावन की विभूतियां धीरे धीरे चली जा रही है। सौभाग्य था हुआ ठाकुर जब दर्शन किया, उन्हीं लोगों की दो एक बातें में सुन करके कारण हमारी कोई विद्वता नहीं और कुछ नहीं, मैं संस्कृत का अनुसार भी सर्ग भी पढ़ा हुआ नहीं, तो मैंने सुना हमको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने इसका व्याख्या उन्होंने की थी, स्वभक्ति स्वयं मैंने कृष्ण की भक्ति, स्व स्व माने निजस्व, उनकी निजस्व कौन है, सबसे बड़ा तो उनका निजस्व कौन है, श्रीमद राधिका जी स्वयं है। उनका कृष्ण के प्रति जो भाव है, कौन सा भाव जो मैं बतला रहा था, प्रेम से बढ़कर के प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव रूढ़ अभिरूढ़ मादन मोदन, मदन भाव चरम सीमा है, ये राधिका जी के अतिरिक्त और किसी में ये कभी नहीं हो सकता है। इसी भाव को मदन को आस्वादन करने के लिए महाप्रभु जी आए, वो तीन भाव। अब देने वाला चीज है वो चीज नहीं दे सकते, उन्नत उज्जवल रस वो नहीं देंगे जो राधिका जी का भाव आस्वादन करने के लिए महाप्रभु जी आए, तो फिर अंतर क्या रह जाएगा। उन्नत उज्जवल रस में पहले बताया ना, एक संबंधात्मिका और एक कमात्मिका होता है। कमात्मिका भी दो प्रकार का है, तत्त भाव इच्छा में और एक संभोग इच्छा। इसमें से जीव का अधिकार आनुगत्य में ही है, स्वातंत्र में सेवा जीव के लिए नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी आनुगत्यवादी मंजरी भाव जो है ना, स्वभक्ति श्रीयम, स्वभक्ति माने श्रीमती राय, भक्ति स्वरूपणी महाभाव जो ले आया है, ये भक्ति की अंतिम परिधि राधिका जी में जो परिवर्षित होती है उनकी श्री शोभा। राधा जी क्या है, ये कृपा लता है, प्रेम की लता, और गोपियां क्या है, पल्लव पुष्प पात्र। कोई पल्लव है ललिता विशाखा इत्यादि की उनकी पल्लव है, और अप्रिय नर्म सखियां इत्यादि भी कोई उस पर है, कोई पाता है, और कुछ जो है अनुगतमय सेवा वाली वो मंजरिया है। ये लता की शोभा है, श्री है। वो तो पहले वाकला बतला रहे हैं संपत्ति, और यहां पर बतला रहे हैं नृसिंह वल्लभ जी कह रहे हैं स्वभक्ति स्वयं माने क्या, स्वभक्ति स्वरूप श्रीमती राधिका जी है, और उनकी जो शोभा है जैसे कोई लता होती है, लता के ऊपर में मंजरी रहे, जैसे कि आम है, आम के ऊपर में मंजरी है, हवा के झोंके आएंगे मंजरी लपकती है, बड़ी सुशोभित होती है। यदि पत्ते और मंजरी हटा दिया जाए लता से तो उसकी शोभा ही नहीं, ऐसे ही रह जाएगी उसकी शोभा। जब पत्ते पुष्प और विशेष करके मंजरी, और उसी मंजरी से ही प्रेम फल लगता है, पहले छोटे छोटे मंजरी से, और फिर मंजरी में से आम के बड़े बड़े हो जाएंगे, फिर बड़े हो जाएंगे, फिर पक जाएंगे, खुद रसाल हो जाएंगे, सुगंधित हो जाएंगे, जगत का मंगल हो जाएंगे। ये गोपियां वैसी है, ये मंजरिया है। इस मंजरी का भाव चैतन्य महापुरुष देने के लिए जगत में कल नया होते ना करो, ये महापुरुष की करुणा विशेष करुणा है। यदि महाप्रभु नहीं आते जगत इसे वंचित रह जाता, सदा के लिए वंचित रह जाता, ये महाप्रभु की विशेष करुणा है। अब समय हो गया है, इसे मैं आज यहीं पर समाप्त करता हूं। अभी इस श्लोक की व्याख्या में बहुत कुछ रह गया है, मैं चेष्टा करूंगा जी करो। Yeah.